गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। परम भागवदीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। आज और तीन श्लोक पढ़ेंगे, 32वें से प्रारंभ कीजिए।
माम ही पार्थ व्यपाशित्य ये पिशु पापयोनयः ये पिशु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः शास्तथा शूद्राः ते पियान्ति पराम गतिम् ते पियान्ति पराम किं पुनः ब्राह्मणः पुण्या किं पुनः ब्राह्मणः पुण्य भक्ताराजर्षयस्तथा ताराजर्षयस्त अनित्यम् असुखम् लोकम् अनित्यम् असुखम् लोक इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैव मामे वैशसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः हरिः ओम।
माम ही पार्थ व्यपाशित्य ये अपि शुहु पापयोनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। ही क्योंकि पार्थ अर्जुन स्त्रिय स्त्री वैश्याः बोलने से बहुवचन है वैश्य के लिए। ये वैश्या मने बोलने से नाचने गाने वाली महिलाएं नहीं, ये वैश्य जो धंधा करते हैं वो हमारा किराने का दुकान कोई भी बिजनेस करते हैं वैश्य। शूद्राः शूद्र इत्यादि तथा पापयोनयः पाप की योनि वाले अपि जो कोई भी शुरू होवे वह भी मेरे लिए व्यपाशित्य शरण होकर परम गति को यान्ति प्राप्त होते हैं। पुनः फिर किम क्या वक्तव्यम कहना है। पुण्यः पुण्यशील ब्राह्मणः ब्राह्मण जन राजर्षयः राजऋषि भक्ताः भक्तजन यान्ति प्राप्त होते हैं। असुखम ध्यान दें, एक शब्द बड़ा गंभीर है असुखम। सुख रहित कहा है सुख रहित। इमम इस लोकम मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के माम भजस्व निरंतर मेरा भजन करो। मनमनाहा भव मद भक्तः मद्याजी मत याजी है माम नमस्कुरु माम एव ऐशेसी ऐशसी युक्ता एवं आत्मानं मत्परायणः मनमनः केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मद्भक्त मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। मत याजी भव मत मेरा शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। माम मुझे सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गांभीर्य उदारता वात्सल्य सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को नमस्कुरु विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। मत्परायण मेरे शरण हुआ इस प्रकार आत्मानम आत्मा को युक्त्वा मेरे में एक ही भाव करके जुड़ करके मां मेरे को ऐश्यसी प्राप्त होएगा। महाराज बड़े ही गंभीर होते चले जा रहे हैं, जो कल बात कही कोई साधारण व्यक्ति नहीं कहेगा, और आज जो कही है वो केवल कृष्ण ही कह सकते हैं और कोई भी नहीं कह सकता है। क्या कहा है कि एक भगवान के प्रति एक श्रद्धा रखने वाले धार्मिक वृत्ति वाले किसी भी मन को एक बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि अगर ये सूत्र नहीं कहते थे कल ही पूरा कर देते थे तो क्या हो मुश्किल थे, कहने की क्या आवश्यकता थी। कृष्ण ने कहा कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि वाले मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। देखिए ध्यान दें, बड़ा अजीब तो लगता है थोड़ा कड़वा भी लगता है। स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है और पाप करने वाले। तुलसीदास जी महाराज के भी एक कथन पर बहुत चर्चा चलती रहती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। यहां ये जो महात्मा लोग जो कहते हैं ना, वो उसके तीन अर्थ होते हैं। एक तो होता है शब्दार्थ, वाच्यार्थ, भावार्थ। तो यहां पर भी जो नारी का अर्थ कहे कृष्ण तुलसीदास जी, उसी अर्थ में नारी कहे। नारी बोलने से जो माताएं हैं वो नारी नहीं है ना, क्योंकि हमें ये शब्द कुछ समझने में अभिप्रेत नहीं है। ये शब्दों से, इन शब्दों का हमारे मन में जो अर्थ है वो कृष्ण के मन में नहीं है। जो नारी शब्द तुलसीदास जी ने उपयोग किया, कृष्ण भी उसी नारी को, या तो कृष्ण जो रूप में नारी कहते हैं तुलसी भी उसी नारी में कहते हैं। शब्दों को ठीक व्याख्या में प्रवेश करना जरूरी होगा और इसको ठीक से समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान दें, मनुष्य की आत्मा तो एक ही है, जड़ चेतन जग जीव चत सकल सभी में एक ही आत्मा है, लेकिन उनके मन तो एक नहीं है, मन तो अलग है। मनुष्य की जो परम स्थिति है उसके बीच की जो स्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न है। मनुष्य आत्यंतिक रूप से तो समान है किंतु मानसिक रूप से विविध है। मनुष्य का विभाजन जो भारतीय बुद्धि ने किया है, पहला विभाजन तो यह है कि स्त्री और पुरुष। देखिए स्त्री है ये, पुरुष है, लेकिन ध्यान रहे यहां स्त्री का अर्थ स्त्री लिंग ऐसा नहीं है। स्त्री का अर्थ है स्त्रैण, स्त्रैण बोलते हैं गुजराती में के बाइलों। वो पुरुष तो है, नपुंसक नहीं है वो, ध्यान दें, वो नपुंसक नहीं है, स्त्रैण। और जब हम कहते हैं कि स्त्री का अर्थ है स्त्रैण, तो पुरुष को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। कैसा पुरुष? स्त्रैण पुरुष। ये जो पुरुष है वो तो पुरुष है, और जो पुरुष जो तृण स्वभाव का है उसको कहा इनको ने स्त्री, यही कहा उन्होंने स्त्री, क्योंकि स्त्रियों में एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो पुरुषों की अभिव्यक्ति अलग होती है, पौरुषेय है। पुरुष और स्त्री प्रतीक हैं, सिंबॉलिक हैं, वो कोई पुरुष माने ये पुरुष है, वो पुरुष है, ये स्त्री है, ऐसा नहीं है। इनके अर्थ को थोड़ा हम और गंभीरता से समझना चाहिए कि गुह्य विज्ञान में जो आत्मा की खोज की जब बात चल रही है उसके लिए स्त्रीण का अर्थ है एक ऐसा व्यक्तित्व जो कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है। स्त्रीण, स्त्री नहीं कहा, स्त्री अग्रेसिव होती है ना, काली बन सकती है, चंडी बन सकती है, दुर्गा बन सकती है, खप्पर लेकर के चल सकती है, स्त्रीण बोलने से कुछ अलग हो जाएगा। ध्यान दें, पुरुष एग्रेसिव है, पुरुष कार्य करने के लिए चेतना में बना हुआ है, उत्कर्ष में, अभ्युदय में, और बड़े प्रहार कर सकता है वो। स्त्रीण है, वो बैठा है निस्तेज है, उदास है, क्या हो गया, वाट जो छो, अरे खड़े होके देखो भाई ये क्या वाट जो छो। स्त्री और पुरुष का जो संबंध है उसमें पुरुष जो है वो खोज करता है, स्त्री केवल प्रतीक्षा करती है। पहल भी पुरुष करता है, स्त्री केवल राह देखती है। प्रेम में भी स्त्री प्रतीक्षा करती है, राह देखती है। अगर कोई प्रेम में स्त्री इनिशिएटिव ले वो तो थोड़ा आक्रामक भी हो स्त्री तो निर्लज्ज लोग कहेंगे उसको, ये तो उचित नहीं। कौन हमारे यहां एक उदाहरण है, वो है दीति। कश्यप ऋषि ध्यान करने बैठते हैं, जाकर के वो उनके कपड़े खींचने लगती है, मेरे को काम पीड़ित कर रहा है। अरे संध्या का समय है, भगवान शिव का चक्र वहां चलता है, तुम ध्यान में बैठे नहीं। तो ये जिस ढंग से भागवतकार ने उस वर्णन को लिखा है कदाचित उनको भी लज्जा आ गई होगी, आंख में अश्रु भी आए होंगे। वो दैत्यों की माता हुए भी कश्यप की पत्नी है दिति। तो ये जो व्यवहार है, अगर स्त्री आक्रामक होती है, स्त्री है प्रेम के लिए बहुत ही अग्रेसिव हो जाती है, उसको हम लोग निर्लज्ज कहते हैं, बेशर्म भी कहेंगे। पुरुष है वो प्रतीक्षा करे, वो पहल ना करे, तो उसको हम स्त्रीण कहेंगे। एक बहुत स्पष्ट इसको समझना चाहिए, व्हाट द कृष्ण मीन टू इट, कृष्ण क्या कहते हैं कि स्त्री। 5000 साल चले गए कृष्ण ने ये गीता कही, ऐसा हम लोग 5000 बोल रहे हैं। अभी मेरी उम्र तो 67 होगी तो 5067 भी नहीं बोलते, 5000 ही बोलते पैदा हुए तब से। तो इस तरह से अगर किसी ने विचार किया हो तो पाश्चात्य में एक है कार्ल गुस्ताव जुंग, उसने स्त्री और पुरुष के मानसिक भेद के संबंध में एक चर्चा की। 20-25 पिछले वर्षों में अभूतपूर्व बात सिद्ध की कि पुरुष जो है वो पूरा पुरुष नहीं है और स्त्री भी है वो पूरी स्त्री नहीं है। हम इनके पौरुष के बारे में नहीं बात करते, पुरुष और स्त्री ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में नहीं बात करते हैं, किंतु पुरुष है हो सकता है 60-70% पुरुष, थोड़ा उसमें भी स्त्रीण है, और स्त्री थोड़ा भी उसमें पुरुष है। लेकिन कोई एक ऐसा पुरुष खोजना जो पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री मुश्किल होगा। वो भावना में जब आते हैं ना तब हमारे असली स्वरूप का भान हमें होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म पुरुष और स्त्री के साहचर्य से होता है, अकेले पुरुष से नहीं होता है, अकेली स्त्री से नहीं होता है, इसलिए उसका जन्म जो संयोग से हुआ तो वो भी संयोग में ही उत्पन्न हुआ है, सैंडविच। क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर से पुरुष दिखाई देता है, भीतर से कुछ प्रतिशत मात्रा उसमें स्त्री की होती है। अब देखिए कि आप पर एकदम, मान लीजिए आप एक समझ लीजिए बात की, आप पर एकदम से हमला हो जाए, मान लीजिए कि घर में आग लग जाए, सोचिए आप कितने भी बहादुर व्यक्ति हो, आकस्मिक कुछ हो जाए तो पुरुष भी स्त्री के समान ही है, व्यवहार करेगा, बचाओ बचाओ तो बोलेगा, सिर पकड़ के रोएगा भी, क्या हो गया, अरे रे 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 ऐसे रो गया, किसी भी आग लग जाए तो। और स्त्री को देख लो, स्त्री अगर उसको पता हो जाए कि आग लगी है और वो घर में बाहर है, तो कितनी भी हिम्मत करके अपना बच्चा अंदर है उसको बाहर से निकाल लाएगी कि नहीं लाएगी, बोलो, उसको पता है मेरा बच्चा अंदर है। वो उस समय स्त्री के अंदर एक पौरुष उत्पन्न हो जाता है, और वो जो पुरुष है उसमें उस समय स्त्री का दर्शन हो जाता है। तो ये जूंग जो है, उन्होंने क्या कहा, जूंग जो है कार्ल गुस्ताव, उसने कहा कि पुरुष को एक नया अर्थ से देखना चाहिए, स्त्री को भी नया अर्थ से देखना चाहिए, कि पुरुष जो है अगर वो एक कदम भी बढ़े नहीं तो वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री है, और स्त्री है वो। गुजरात में अभी भी स्त्रियां स्मशान में नहीं जाती है, दिल्ली में तो जाती है, पंजाब में तो पूरा जाती है, पूरा संस्कार करती है, आर्य समाज में पूरा जाती है। तो अगर स्त्री डॉक्टर बन सकती है, स्त्री हवाई जहाज चला सकती है, हमारी श्रद्धेया किरण बेदी दम उसको टर्रा दिया, लोग उसको क्रेन बेदी बोलते थे, वो प्रधानमंत्री जी की गाड़ी को भी टो करके ले गई, नियम सबके लिए एक है, दिल्ली में गाड़ी है तो उसी सफर ही, उनको बड़ा तंग कर दिया उस बिचारी को। तो कहने का क्या तत्पर है कि स्त्री में भी पौरुष काफी है। तो भगवान जो कहते हैं त्रैण से अर्थ है ऐसा मन जो कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं, ज्यादा से ज्यादा समर्पण करता है, ग्राहक मन, रिसेप्टिविटी, द्वार खोल करके प्रतीक्षा करता है। अगर हम स्त्री के मन को ठीक से समझें तो वह किसी ऐसे प्रतीक में प्रकट होगा जो ऐसे करके, अभिशारी का भाव है, मुग्धा का भाव है, प्रतीक्षा का भाव है, ऐसे करके देख रही है बस कदम, और प्रतीक्षा कर सकती है, प्रतीक्षा में रत, खोज में चली गई नहीं, प्रतीक्षा में डूब गई। उन्मिलित नयन ऐसा कहा है, उन्मिलित आंखें खुली है, अभी आएंगे, बस द्वार में खड़ी हो गई, एक हाथ ऊपर ऐसा करके, अभी आएंगे अभी आएंगे। जिसकी प्रतीक्षा में उसको तो खोजना तो पड़ेगा, वो पुरुष चित्त का लक्षण है, द संघर्ष का, द स्ट्रगल का, परफेक्शन का। कृष्ण कहते हैं, ध्यान दें, स्त्रियः वैश्याः, ये जो स्त्री है वो वैश्य है, शूद्र है। ऐसी स्त्री जो स्त्रैण स्वभाव का पुरुष हो, तब भी स्त्री माने महिला नहीं, स्त्रैण स्वभाव का पुरुष जो कुछ भी करने के लिए उद्यत नहीं है, तो उसका भी मोक्ष होता है। तो ये वैश्य और शूद्र क्या है, ध्यान दें, ये जो मनु ने जिस तरह से कहा है उसको मनु के ढंग से समझना चाहिए, उसको जो हम लोग अभी क्लेश किए हुए हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र, ये हमारी सोच ही नहीं है, ये हमारा त्रैण ज्ञान है, त्रैण, जिसने नया विचार नहीं किया गहराई में जाकर के। क्योंकि मन की, जैसे कहा कि आत्मा एक है, मन तो अवस्था अलग है, तो मन जो है वो मन कुछ भी नहीं करना चाहता है, निम्न स्तरीय स्तर पर रहता है, जिसका अभ्युदय के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, नीचे ही रहूंगा। और कभी कभी तो ऐसे कहते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप में, वो कल सज्जन एक शाम को आए, मेरी याद शक्ति बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी याद शक्ति चली गई है, वो मुझे लिफ्ट में ऊपर से नीचे लाए, तीन चार उन्होंने दबाई स्विच, तो उसमें घंटी बज गई इमरजेंसी की, कुछ और भी बज गया। मैंने कहा ये लिफ्ट आज सुबह लगी क्या, आप पहली बार आ रहे हो? नहीं नहीं एक साल हो गया। तो एक साल पर आने पर आपको क्यों पता नहीं है कि नीचे जाने वाला स्विच नीचे होता है, आप ऊपर का स्विच दबा रहे हो। जो थोड़ी आजकल मेरे को विस्मृति हो गई है, अरे एक साल तक जिस लिफ्ट में कम से कम एक दिन में बंदा एक बार तो नीचे जाएगा ही जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस लगा के बैठा है, सुबह जाएगा तो शाम को वापस आएगा, तो 365 दिन जिस लिफ्ट में चला है, तो हम बैठ के बोल सकते हैं भाई यहां दाहिने से बाया हाथ को जो दूसरी स्विच दबाओ तो ट्यूबलाइट होगी, पहले नहीं दबाना, ये बाया हाथ का जो बोर्ड है उसमें पहले दबाओ, क्योंकि हमने इतना साल से आ रहे हैं तो मुझको पता है, मैं अहमदाबाद में जाकर भी बोल सकता हूं कि यह फलानी स्विच कहां है, क्या मुश्किल हो गया? मगर वो हमेशा सोचते रहते हैं, प्रेमपुरी जाते हैं, अरे वो तो बड़े लोगों का काम है, कोठियां वाले जो होते हैं ना वही लोग जाए, यहां तो हमारे जैसे गरीब लोग तो क्या, मैक्सिमम तो है ना वो बस यही समझो कि बाबूलाल जी का दूर से दर्शन, द्वारकाधीश का नहीं जी नहीं, वो तो पैसे वाले लोग जाए, क्या 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 विचार क्या है, व्हाट ए हॉपलेस थिंकिंग। ऐसा सोचने वाला मन शूद्र मन है। जो शूद्र कहा है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, ऐसा हतप्रभ जिसमें चेतना नहीं, उदास खिन्न मृतपाय चैतन्य शून्य, ऐसा जो है भारत में चार व्यक्तित्व कहे ठीक है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किंतु हमारा जो कृष्ण है, हमारे कृष्ण का ये जो आप लोग समझते हैं उससे कोई तात्पर्य नहीं है। ये जो शूद्र है वो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि जो केवल शरीर के इर्द गिर्द रहता है, वो मन तक पहुंचा ही नहीं। अगर वो मन तक पहुंच जाएगा उसको थोड़ा और उत्क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी, वो शूद्र से ऊपर उड़ जाएगा। वो कहां केवल शरीर में है। वो जनक महाराजा के दरबार में जब अष्टावक्र जी का आगमन हुआ तो लोग हंस पड़े थे, तो जोर से अष्टावक्र भी हंसे, बोले हम तो तुम्हें देख के हंस रहे हैं, तुम किसको देख के हंस रहे हो? बोले तुम लोगों की मूर्खता को सुना था जनक के यहां, सारे विद्वान है मुझे क्या पता, सारे सब चमार जमा हो गए, आह चमार की चमड़ी को देख रहे हो ना, जो शरीर के ही आगे पीछे घूमता रहे, ये कदाचित पिछले कृष्ण के ये कथन के बाद में शूद्र परिवारों में एक ब्राह्मण हुआ है विद्वान, कि जिसने अपनी बुद्धि से आग लगा के रख दिया, अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर, उनको ब्राह्मणों पर खिन्नास क्यों आ गई है, इसके लिए आई तो तुम शूद्र को क्यों दबाए हो? ब्राह्मणों ने शूद्र को दबाया नहीं है, शूद्र खुद नहीं उठे। आप अगर आप खड़े हो गए तो दूसरे शूद्र को भी खड़ा होना चाहिए था, तो नहीं चाहते वो। काफी साल पहले की बात है, मान लीजिए कोई ऐसा ही होगा कि 20-22 साल पहले की बात है, वो देवगौड़ा जी हमारे बैंगलोर में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बड़ी प्रयत्न की, बड़ी कोशिश की कि हमारे कर्नाटक में ये सब एक हो जाए, सरकारी स्तर में भी हम ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय रिजर्वेशन किसी को भी नहीं, सब जो मेरिट में आएगा उसको मिलेगा। तो तमाम जो शूद्र अपने आप को कहलाते हैं, कहलवाना चाहते हैं, उनके हजारों बच्चे हैं सड़क पर आकर के सो गए, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल तक सड़क पर पूरे, कोई गाड़ी चल सकते नहीं, कोई हजारों की तादाद में पुलिस क्या उनको डंडा मारेगा क्या, क्या करेगा क्या, ट्रेन की पटरी पर सो गए। हमने एक ट्रेन चयन की, रात 11 बजे हम जाएंगे, तो सुबह मैसूर जाने के लिए कोई उपाय नहीं था, कैसे घर से निकलो, तब रात 11 बजे जाएंगे, तो रात 11 बजे हम लोग गए ट्रेन में बैठ गए, अभी सवेरा होगा तो सो भी गए थे, ठंडी हवा तो थी, मगर सवेरे देखा तो प्लेटफॉर्म के बाहर ही निकली थी ट्रेन, और कहीं लंबे नहीं गए, वहीं के वहीं थे। हजारों बच्चे, क्यों चिक चिक मकड़ बोलते हैं उसको, कनाडा में बोलते हैं चिक चिक मकड़, वो छोटे छोटे बच्चे, क्यों हम अपना शूद्रत्व नहीं छोड़ेंगे, हमारा जो हक है वो हमको मिलना चाहिए। तो आपको शूद्रत्व कोई बोले तो पसंद नहीं और हक भी छोड़ना चाहते नहीं, तो ये जो शूद्र नहीं है ना, जो मन के चारों ओर ही घूमता रहता है, शरीर के इर्द गिर्द, शरीर से ज्यादा उनको जगत में और कोई अस्तित्व दिखाई पड़ता नहीं है। अरे शरीर के भीतर शरीर ही उनके लिए परमात्मा है, शरीर में ही सुख है, शरीर से प्रसन्न है। शरीर दुख हो जाए तो दुखी होता है, शरीर की मांगे पूरी हो जाए तो समझता है मेरी मांगे पूरी हो गई। ये भारतीय शास्त्रों ने शूद्र ऐसे नहीं कहा है नारायण। कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र नहीं होता है, वो व्यक्ति है उसके मन से शूद्र होता है। कितनी ऊंचाइयां तय करना है अगर वो कर लेता है वो शूद्र नहीं है। ध्यान रहे, हमारे भीतर का अगर शूद्र विलीन हो गया है तो हमें मृत्यु की पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि हम देह से परे हैं। देहो नाहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं देह नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है अजर अमर अविनाशी। हाय से हमारे गुरुदेव की समाधि हो गई है, तो ये 28 अगस्त को रात 8 बजने के कोई 9-10 मिनट के पहले अमेरिका में रहे, तो सब लोग सोचते रहे अध्यात्म स्वामी जी उसके सांस में गुरुदेव 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 बोलते रहते हैं तो इनको क्या हो जाएगा। तो उन्होंने 10 लोगों को कहा कि धीरे धीरे ये बात बताओ वो बात बताओ। तो एक डॉक्टर है उनको जो लेने के लिए आए थे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ बात मुझको पता है स्वामी जी महाराज का शरीर से। कैसे पता हुआ? और 3 दिन पहले जो सांस कम हो रही थी पता है? गाड़ी को साइड में करो, हमने अपने आश्रम में बुलाया है, इमीडिएटली मैं बोलता हूं उसको डिक्टेट करो, लिखो, डिक्टेशन देता हूं, ऐसे ही अखबार में छापो, पेड़ छाप दो फोटो के साथ में, कल प्रेयर मीटिंग करो, 16 दिन तक अन्नदान करो, 16वें दिन सोड़सी करना बड़े डामडाम से, तमाम संतों को बुलाओ, सब लोग आएंगे गुजरात भर से। तो क्या हो गया? हमारे यहां तो ये सिखाते हैं गुरु मरा चेला रोया, दोनों ने अपना जन्म खोया, ये क्या है? गुरु है तो क्या हो गया? गुरु ने कुछ सिखाया नहीं इसलिए रो रहा है। ये देह है तो जन्म है तो मृत्यु, उसमें रोना क्या है धोना क्या है भाई? जो शूद्र है तो वो शरीर पकड़ के रोएगा, किंतु शूद्र के मन से अगर हम अलग हो गए, शूद्र के घेराव से हम अलग हो गए तो फिर नहीं रोएगा ना, तो उसको मृत्यु की पीड़ा, खुद को भी शरीर छोड़ने की पीड़ा नहीं होगी। अब जिसके भीतर से शूद्र विलीन हो गया है उसका शरीर का दृष्टिकोण बदली हो जाएगा, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस रेस्टलेस माइंड, आई एम द एसेंस ऑफ इमोर्टल आत्मन, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे श्याम अमिता ज्योति, ज्योतियों की ज्योति, ज्ञान का ज्ञान, ये असंभव नहीं है। हमको अपने शूद्रत्व से ऊपर उठना है। संक्षिप्त में कहें कि जो एक समझता है मैं शरीर हूं वो ही शूद्र है। मैं शरीर हूं, सब कुछ शरीर है, शरीर पर मैं समाप्त हो जाता हूं, शरीर मेरा जन्म है, शरीर मेरा जीवन है, शरीर ही मेरी मृत्यु है, मैं शरीर के पार नहीं हूं, शरीर से भिन्न नहीं हूं, शरीर में समाप्त हूं, शरीर मेरी सीमा है, यही शूद्र है। कृष्ण कहते हैं ऐसा शूद्र भी मुझको प्राप्त कर सकता है। कोई सी स्त्री जो पुरुष त्रैण स्वभाव का हो तो वो इसी भी, और ऐसा शूद्र भी। अब क्या कहा है भाई? शूद्र भी कहा जो शरीर को जलाए रहते हैं। तो आपको वैश्य कौन है? वैश्य दूसरी कोटि है। शूद्र उसे कहते हैं कि जो शरीर के पास घूमता रहता है, तो वैश्य उसे कहते हैं जो मन के पास घूमता रहता है। तो बहुत जरूरी बात है, देखिए अगर वो थोड़ा शरीर से ऊपर उठ गया, बाहर से अंदर आ गया, स्थूल से सूक्ष्म में आ गया, वो वैश्य हो जाएगा। वैश्य माने वो बनियागिरी करने वाला, दुकान चलाने वाला, बिजनेस करने वाला, वो वैश्य नहीं है। धीरुभाई अंबानी ना, ऐसा नहीं है। वो कौन है? वो बिजनेसमैन जो अपने मन के चारों ओर घूमता रहता है। शूद्र को भी वासनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, बहुत सॉलिड है, स्थूल है, किंतु वैश्य की कामनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं मानसिक है, सूक्ष्म है। वैश्य धन के लिए जीता है, धन सूक्ष्म बात है, उसको धन को मिलने में ही रस है। ये न के न प्रकार विद बैल बुक एंड कैंडल हाउ आई कैन गेन दिस मनी, वो तो वैश्य है। वैश्य यश के लिए जिएगा, वैश्य पद के लिए जिएगा, उससे मिलने वाला रस मन के लिए मिलने वाला रस है। वैश्य धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। शूद्र पद के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपने शरीर को गंवाने के चला हो जाएगा, शरीर गंवा दूंगा। लेकिन वैश्य है वो शरीर गंवाने को तैयार नहीं है। इसी लिहाज से शूद्र शरीर से स्वस्थ होगा, वैश्य मन में स्वस्थ होगा। शरीर से लल्लू हो सकता है, मन से कभी नहीं होगा। तब हम कहते हैं कि भाई ऐसा वैश्य भी मेरा स्मरण करे तो वो मुझको प्राप्त हो सकता है। और तीसरी कोटि है क्षत्रिय। अभी क्षत्रिय क्या होता है? शरीर और मन दोनों को पार करके वो आत्मा में आ गया। शरीर और मन दोनों को पार करके आत्मा में आ गया। ओ, अपने गौरव के लिए लड़ेगा वो। वो कहते हैं कि इसका कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, ये स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, ये भी मेरे भगवान का ये नाम अगर ले तो वो भी पार से। और कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो आपके लिए तो कोई चिंता का प्रश्न ही नहीं है। व्हाट ए ग्रेट थिंग। बोले कि आप क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, तो उनके लिए तो चिंता ही नहीं है, ये लोग तो पार हो ही सकते, तो उनका तो होना ही होना है। तो कृष्ण कहते हैं कि वैश्य भी अगर मुझे स्मरण करे, उपलब्ध हो जाते हैं, और जो मन के घिरे हैं, आत्मा तक जिनकी कदम नहीं है, तो ये तीसरी कोटि का जो क्षत्रिय है, ध्यान दें, वो धन पर लात मार सकता है, शरीर पर लात मार सकता है, मन की चिंता छोड़ देगा, किंतु आत्म गौरव उसके लिए सबसे बड़ी बात है। उसको आप नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो आत्म गौरव नहीं गंवा सकता। चौथी कोटि है ब्राह्मण, जो आत्मा से ऊपर हो गया, केवल परमात्मा में स्थित है। जो आत्मा में स्थित है, जो परमात्मा में स्थित है, ब्राह्मण क्या है? वो तो परमात्मा में स्थित है। जो आत्मा से भी पार चला जाए, ब्रह्म में जिए, यदि छन्ति ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जो सतत ब्रह्म का ही चिंतन, ब्रह्म से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, उसी ब्रह्म में ही रहे, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करें, उसको कोई आत्मा का मूल्य नहीं है, केवल परमात्मा ही मूल्यमान जिसके लिए दे गया, वो ब्राह्मण है। कृष्ण कहते हैं कि पहले दो प्रकार के लोग चिंतन करेंगे, स्त्री के साथ में वैश्य और शूद्र, तो वो तो मुझको उपलब्ध करेंगे, किंतु बाकी लोगों का तो कहना है क्या, उनको स्मरण करने में भी प्राप्त हो जाऊंगा। देखिए ध्यान दे, एक इंसान जब मरता है ना तो उसकी आत्मा भटकती है। ये जो एक प्रयोग था, ये कृष्ण का हो सकता है कि उस समय के ऋषि मुनियों का था, शूद्र अलग, वैश्य अलग, क्षत्रिय अलग, ब्राह्मण अलग, तो ऐसा था कि आत्मा को कोई चॉइस नहीं है। एक शरीर छोड़ने के बाद में वो दूसरे किस शरीर में जाएगी, उसको कोई चॉइस नहीं है। किंतु फिर भी अगर वो जाना चाहे तो ब्राह्मण की आत्मा में जाऊं, तो मान लीजिए कि ब्राह्मण की आत्मा बहुत ऊंची अवस्था में आकर के शूद्र के यहां आ गई, तो 50 साल की उम्र होते होते अगर वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता था, तो 5 साल में उसको जो अभ्युदय होता था चिंतन का, अध्यात्म का, वो शूद्र के घर में 50 साल तक नहीं होगा। एक इसको गंभीरता से समझना चाहिए कि ये प्रयोग जो है वो अभी नहीं रहा, दुर्भाग्य से ना। और दुर्भाग्य से क्या हो गया कि हमारी दुर्बुद्धि ने इस स्तर से सोचना कर दिया बंद, और शूद्र हैं वो अपना अड़ंगा अलग जमा के बैठ गए, क्षत्रिय तलवार लेके खड़े हो गए, वैश्य हैं वो धन के ऊपर बैठ गए, वो ब्राह्मण लोग हैं वो सबकी छाती के ऊपर बैठ गए, हम सबसे बड़े हैं। कितने दुख का कारण है ये विभाजन है। वो उसने एक आग लगा दी है समाज में अज्ञान के कारण। कृष्ण का जो चिंतन था वो चिंतन है कि मन की स्थिति में ऊंचे चलते चले जाओ, आप शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण हो सकते हैं। अब कृष्ण कहते हैं कि देखिए, अब ध्यान देना, हम जो यहां कुछ कह रहे हो किसी की निंदा करने के लिए नहीं है ना, एक समझ है। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि वो शरण में आने का एक मूल्य है। मूल्यवान कौन है, पुण्यशील कौन है, ब्राह्मण जन है कि राजर्षि। कृष्ण कहते हैं किम पुनः ब्राह्मणा, ब्राह्मण है या तो राजर्षि है तो उनके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लोकम अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम, अनित्यम असुखम, ये भी बहुत गंभीर शब्द है। देखिए ध्यान दें, कृष्ण ने ये नहीं कहा कि ये संसार दुख से भरा हुआ है, नहीं कहा। बुद्ध ने कहा संसार दुखमय है। भगवान शंकराचार्य ने भी यही कहा है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, संसार को दुख का सागर कह दिया। कृष्ण ने ये नहीं कहा है, कृष्ण का चिंतन ही अपने आप में अलग है। क्या कहा, सुख रहित कहा है, अनित्यम असुखम लोकम, सुख रहित कहा है, दुख से भरा नहीं कहा है, सुख रहित। सुख रहित का मतलब क्या हुआ, अरे जिसमें आप सुख की आकांक्षा करते हो, मिलने वाला नहीं है तो आकांक्षा करते हो तो आपको सुख तो मिलता नहीं, दुख मिलता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी इसका गुण क्या है, खींचना है। पृथ्वी का गुण क्या है, ये खींचना है नीचे। अभी कोई समझे नहीं, मैं हाई जंप करता हूं 20 फीट कूद लाऊंगा, कूदो नीचे आके गिरे, हाथ टूटा पांव टूटा, ये पृथ्वी के कारण। अरे पृथ्वी माता को क्यों दोष देता है भाई, पृथ्वी का तो गुण ही यही है। पृथ्वी दोषी नहीं है, दोषी आपकी सोच है जो आपने समझा नहीं। ये एक कंकर को इतना ऊंचा फेंको, कितना भी ऊंचा वो नीचे आके गिरेगा, वो हवाई जहाज क्यों नहीं गिरता है। पृथ्वी है वो नीचे खींचने का गुण रखती है, ग्रेविटी कहते हैं उसको, किंतु हवाई जहाज इतनी गति से चलता है कि वो यहां आया है तो यहां खींचने लगेगा, उसके पहले वो आगे चला जाता है, वो इतनी गति में चलता है। जैसे कि हाथ हमने उठाया और छोड़ दिया तो गिरना पड़ेगा, पर हमने हाथ हिलाते रहे तो गिरने का कोई मौका नहीं है। कैसे, आओ इस गंगा जी में नहाए, आओ इस गंगा जी में नहाए, वो गंगा गई, वो दूसरी आ गई, वो गंगा वो नहीं है। ध्यान दें, ये पूरी सृष्टि है वो चल रही है, पूरी सृष्टि है वो भ्रमण में है, वो इतनी भ्रमण में है कि भ्रमण दिखता नहीं है। जैसे कि वो एक छोटा सा एक बांबू का टुकड़ा रहे, हम छोटे थे उसमें एक तार बांधते थे, तार होता था कोई 6-8 इंच का, उसके आगे नेट में जाली के बीच में कपड़ा फंसाते थे, आग लगा देते थे, यूं घुमाते थे, इतना जोर से घुमाते थे तो आग दिखती थी कि आग का सर्कल दिखता था। वो सर्कल है क्या, क्यों दिखता है, गति से सर्कल दिखता है। ये सिनेमा का जो पट्टी है ना, छोटे थे तो काट काट के ले आते थे, लाकर के वो धूप में शीशा रखते थे, धूप में शीशा, शीशे से वो जो प्रकाश आता है रिफ्लेक्शन, वो बाथरूम की खिड़की में रखते थे, बाथरूम की खिड़की में एक बल्ब में पानी भर के रखते थे, तो वो दीवार के ऊपर में एक प्रकाश का स्क्रीन आता था, उसके बीच में फिल्म रख दिया टुकड़ा, वो दिखता था, किंतु वो स्थिर है, वो पट्टी जो है उस फिल्म की स्थिर है, जब स्थिर में तेज चलती है तो ऐसा हाथ है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। वो पट्टी को देखो आप, सोचित्र, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। तेज चलती है तो वो नाचने के जैसा दिखता है, वो थोड़ा होठ खुला है, थोड़ा गति में वो एक अलग दिखता है। तो ये जो पूरी क्षण भंगूर कहा है, क्षण क्षण में ये क्षणित होता है। एक क्षण क्या होता है पता करो, एक क्षण क्या होता है देखिए। ये पानी की एक बूंद गिराओ, पानी की एक बूंद, नहीं तो ये हमारे आंख में दवाई डालने का जो आई ड्रॉपर है उससे एक बूंद आई शाही गिरा दो, उससे एक पानी गिरा दो, एक बूंद पानी में कितने जम्स है। पृथ्वी के आबादी 3 अरब, मुझे पता नहीं ज्यादा भी हो सकती है, 3 अरब है। वो 3 अरब लोग एक साथ मिलकर के उसको देखने की कोशिश करेंगे तो 6 अरब साल तक नहीं ढूंढ पाएंगे, इतने कीड़े उसमें होते। अब बताओ हम क्या कहते हैं क्षण। वो जो रेती का एक घड़ी होती है, रेती की घड़ी, ऊपर से वो एक एक कण नीचे गिरता है, एक एक कण को बोलते हैं एटम। जब परमाणु बनाया तो लोगों को पता नहीं था कि परमाणु क्या है, उसका भी विभाजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। परमाणु बनाने वाला जो था वो मर गया, इतनी खुशी में मर गया, आ हमने दुनिया को एक नई शक्ति देके जा रहे। किंतु पीछे के वैज्ञानिक है वो सिर फोड़ के रह गए कि एक साथ में लाखों लोगों को हिरोशिमा नागासाकी में मार के रख दिया। ये विज्ञान है, तो उस विज्ञान को विज्ञान के ढंग से जब हम देखेंगे तो पता होगा कि सुख रहित है ये विश्व, दुख अर्जित है। हम सुख की, मान लीजिए कि मैं अपने मन में आकांक्षा कर लूं कि भाई जब मैं अहमदाबाद से आता हूं तो ये प्रेमपुरी आश्रम के सारे ट्रस्टी हैं, वो केवल ट्रस्टी ही मात्र नहीं किंतु सारे भगत लोग हैं, रेलवे स्टेशन में खड़े रहे, हाँ मेरा डेड बॉडी आ जाएगा तो आ जाएंगे लोग, वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तभी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओ सॉरी बोलना तो गिरीश भाई बोलेंगे हमारा टूर में थोड़ा जवान तो सिंगापुर, सो आई वॉज नॉट एबल टू, तो कह देंगे वो एक चिट्ठी उसके ऊपर में रख देंगे चारों मासी आकर के कि गिरीश नहीं बार गा गयो छे तो नहीं आ भी सके तो माफ कर जो। किंतु अगर मेरी आकांक्षा है, तुमको आकांक्षा ही नहीं है तो दुख नहीं है। आकांक्षा रखेंगे कि लोगों को आना चाहिए, फूल की माला डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। आकांक्षा रहने से दुख है, आकांक्षा नहीं रहे तो सुखी है। तो संसार में दुख नहीं है, दुख तो हमने अर्जित करते हैं, पैदा करते हैं अपनी कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से। इसलिए ये भगवान देखो कृष्ण क्या कहते हैं, ये दुखमय संसार ने कहा सुख रहित है, दुख स्व अर्जित है। इस शब्द का ख्याल करें, कृष्ण कहते हैं सुख रहित है जगत, क्षण भंगुर है। तो ये क्षण 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 कितना है, कभी ऐसा नहीं करना कि हम कोई स्थिर रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, क्या कहा, मुझे प्रेम करो। कृष्ण कहते हैं मामे वैश्यसी युक्त एव आत्मानम। एक मुझे बात करें, क्या कभी कोई प्रेम करने वाले सुखी होते हैं क्या? एक नाम सुना है लैला मजनू, ओ मजनू पिट गया, श्री फरहाद मार दिए। अभी वो मुमताज और शाहजहां ने, तो क्या मुमताज जिंदा है क्या? दबादी गई पत्थरों के नीचे, क्या प्रेम है? मान लीजिए कि आपकी पत्नी है, बड़ी सुंदर स्त्री है, इतने सुंदर केस हैं उसको, और कान बड़े सुंदर है, नाक बड़ा सुंदर है, और गला बिल्कुल ऐसा सुंदर है, और कान में अलंकार, नाक में अलंकार सब करके रही है, और दुर्भाग्य से ऐसा ना हो, हार्ट फेल हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसको आप में शोकेस में रखते हैं क्या? गिनीज एंटरप्राइज में रखते हैं क्या? हाँ, तो ए, हमारी प्रिय कोई रही पहले, हाँ, हमारी ग्राहक थी, हमसे बहुत बड़ी नर्तकी थी, हमसे बहुत गहना खरीदती थी, बर्तन खरीदती थी, कपड़ा खरीदती थी, सिनेमा में बड़ी हीरोइन थी। तो ऐश्वर्या राय है ना कोई बड़ी काजोल की जुल है, तो पहले एक नरगिस एक रही है, हाँ, तो ये मधुबाला भी है, जिंदा है मर गया, गया तो मधुबाला को किशोर कुमार ने रखा क्या मसाला भर के, ऐसा करके अनारकली सजा करके रखा क्या? अरे नहीं रखा भाई, नहीं नहीं, उसके सुंदर केस को रखते हैं, बाल उसकी स्मृति नहीं रखे। वो कोई राज कपूर का अभी किसी ने बाल नाखून नहीं रखा है, योगी बाबा का रखा है, स्वामीनारायण भगवान का भी रखा है, स्वामी शिवाजी का भी रखा है। गुरुओं के संतों के बाल हैं, नाखून हैं, वो उनके वस्त्र हैं, उनके जूते मोजे लोग रखेंगे, ये सिनेमा वालों को कोई नहीं रखते। कितना प्यार नहीं हो जाए, यहां कितने लोग बैठे हैं, किसके घर में राज कपूर की छवि? आपके बंबई का ही लड़का था वो, नहीं है वो प्रेम जो कहते वो आपका प्रेम दुर्भाग्य से प्रेम नहीं है, वो क्या है, वो दुख ही देने वाला है, उसे कोई उपलब्धता नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो शाश्वत है उसको प्यार करो भाई। कौन है शाश्वत? ऐसा प्रेम जो शाश्वत है वो केवल एक ही है, वो परमात्मा का प्रेम है जो पाया जा सकता है। आदमी आदमी को प्रेम करता है, अरे क्या आदमी क्या है भाई वो, यद दृश्यम तद नश्यम, जिसका जन्म है जाता सही ध्रुव और मृत्यु, जिसका जन्म है उसका मृत्यु होना ही है, तो फिर क्यों उसे प्रेम करो, तो दुख नहीं होना फिर? ओके, नहीं होता नहीं है, कोशिश मत करो, ये नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, वो एक केवल परमात्मा है। इसलिए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसने क्या कहा, अगर पत्नी पति में परमात्मा का भाव रखती है तो प्रेम तो ठीक है, यूएस में अमेरिका में नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। उनका संस्कृति अलग है। हमारे यहां क्या बोलते हैं, पति ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर, पति साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री पतये नमः, ऐसी हमारी भावना है। तो जाकर के इनके प्रेम है, शादी होने के बाद में 50 साल को सेलिब्रेट करते हैं। जब हमारे भारतीय लोग अमेरिका में रह करके अपने दाम्पत्य जीवन के 50 साल सेलिब्रेट करते हैं तो सारे अमेरिकन बोलते हैं व्हाट, वी डोंट बिलीव, क्योंकि उनके यहां हर साल में 3 शादी होती है। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, मैडम मेरी स्कोजी हमारे भारत में आई थी तो शिवानंद आश्रम में आकर के 10 दिन रही थी, 119 साल की उनकी आयु थी। तो वो शादी के बाद में जो घूमने जाते हैं ना, वो हनीमून बोलते हैं, तो वो कहती कि मुझको ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम में जाऊंगी अपने पति को लेकर के, क्योंकि जब मैं 100 साल की थी तब यहां आई थी, मुझे ये आश्रम बहुत अच्छा लगा। ऋषिकेश तो 119 साल में अपने तीसरे पति को लेकर आई थी और बच्चे नहीं हुए थे, तो उन्होंने एक पता नहीं कितना 19वां 22वां कुत्ता पाल लिया था, नेपाल से लाई थी, उसका नाम था शक्ति। मैडम मैरी स्क्वेजी डॉक्टर साइकोएनालिसिस पेरिस से आई थी, आई वॉज एन एलो टू हर टू लुक आफ्टर हर। भारतीय सरकार ने कहा कि स्वामी जी आप वो जहां जाएगी ये हमारे देश की अतिथि है। 119 साल में तीसरे पति को और 19वें कुत्ते को लेकर के, ये हमारी संस्कृति नहीं ना। हमारा साथी तो है, वो पति तो पति बस खत्म, बीजू कश नहीं, पति खत्म। ये जो हमारी संस्कृति वो अलग है। इसलिए प्रेम कब हो सकता है, तब क्या बोलते हैं, बच्चों में कृष्ण को देखना। हमारे बच्चे को नाम रखते लालो, नाम पाड़ो। क्यों अपने बेटे का नाम, अपने पोते का नाम लालो रख देते हैं, ताकि उसमें कृष्ण की जैसी प्रीति हो। हर स्त्री में हमको क्यों कहते हैं कि भाई ये तो ग्रह लक्ष्मी है, और ग्रह काजल है, ऐसा ग्रह नहीं बोलते वो, और ग्रह काजल नहीं बोलते। काजल कितनी भी सुंदरी हो जाए तुम्हारे सिनेमा कंपनी की, वो ग्रह लक्ष्मी कहलाती है। क्यों? उसको सद्भावना से देखते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये कृष्ण कहते हैं कि तुम कि मामे वैश्य युक्त व मृत से जुड़ जाओ, कैसे? परमात्मा भाव से। कि अपने पति को देखो तो परमात्मा के भाव से देखो, पत्नी को देखो तो परमात्मा भाव से देखो। अपने क्या बोला है, जिन माता पिता की सेवा कीनी तिन तीर्थ धाम फिरे न फिरे। माता पिता की जिन्होंने सेवा की है वो तीर्थ धाम वो ही है उनके चरण में। 68 तीर्थ सदगुरु ने चरणे, गंगा यमुना रेवा। तो क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों हमारी संस्कृति बनाई, कहते कि किसी के भी माध्यम से तुम सभी में उस परमात्मा का दर्शन करो। परमात्मा कहते हैं कि मन मना अभाव मत भक्त, तो कुछ भी दे सकते हो, कैसे भी करके तुम अपने मन को उधर लगा। ये अनन्य जो प्रेम है वो मन से ही हो सकता है, बिना मन के नहीं हो सकता है। तो जो मन जो है वो कैसा है भाई, कहते हैं कि हमारे यहां एक जो बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के साथ में रोने लगता है। अगर वो नहीं रोएगा तो पहले डॉक्टर रोएगा, बाद में नर्स भी रोएगी, जब पता चलेगा तो माता पिता रोएंगे, पहले तो डॉक्टर। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो है वो माता के गर्भ में जब रहता है तो वो मां जो सांस लेती है उससे उसका गुजारा होता है। अब जो माता के गर्भ से बच्चा बाहर आया तो उसको खुद को सांस लेने के लिए खुद को प्रयत्न करना पड़ता है। खुद प्रयत्न करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा तो हार्ट खुलेगा। हमारे यहां भीतर हार्ट जो है वो फेफड़े का ही एक भाग है। ये हृदय में रक्त शुद्धिकरण नहीं होता है, फेफड़ों में होता है। हार्ट तो खाली पंपिंग स्टेशन है, अशुद्ध रक्त लेकर के फेफड़े को देता है, फेफड़ा शुद्ध करेगा ये लेकर के फिर दूसरे लोगों को देता है, ये हार्ट का काम है। तो इस हार्ट को चलने के लिए, फेफड़े को चलने के लिए क्रंदन करना ही पड़ेगा, बिकॉज द चाइल्ड न्यू बॉर्न बैब इज नॉट एबल टू ब्रीद, और सांस लेने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए रो करके चिल्ला करके परमात्मा को पता है कि आपके अवस्था क्या है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्त मध्याजी, मुझको बुला, रो के बुला, चिल्ला के बुला, नहीं तो तेरा हृदय नहीं चलेगा। बचपन से पैदा हुए तब से कहते मैं तुम्हारा क्या बोला है कि हृदयशे अर्जुन स्थिति, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर तमाम के हृदय में रहते, उस हृदय में जो परमात्मा स्थित है उसके लिए कहते हैं कि विह्वलता चाहिए। जैसे बच्चा है उसकी सांस नहीं चलती तो विह्वल हो जाता है, और नहीं हो तो इसको 3 दिन क्यूबेटर में रखते हैं क्योंकि भाई इसकी सांस चले उसको, तो क्या कहा है कि विह्वल हो जाए। तो ऐसी विह्वलता हो जो बच्चा जैसे क्रंदन करता है, भक्त को रोने का अभूतपूर्व संदेश कृष्ण ने दिया है। कहते कि विह्वलता हो, दूसरी बात है समर्पण हो। एक तो विह्वलता हो आक्रंद, दूसरी बात है समर्पण हो। समर्पण बोलने से टोटली सरेंडर, समर्पण बोलने से दंडवत क्या करते हैं, दंडवत का मतलब क्या होता है, हमारे सूर्य नमस्कार में वो एक अवस्था है 6ठी अवस्था, उसको साष्टांग नमस्कार कहते हैं। स अष्ट अंग, दो पांव, दो हाथ, दो घुटने, हृदय और दिमाग। तो मैं मेरे तमाम कर्मेंद्रिय, मेरे ज्ञानेंद्रिय, मेरा हृदय और दिमाग, मन बुद्धि चित्त, उसको तमाम को आपको निवेदित करता हूं, समर्पण करता हूं। कृष्ण कहते हैं असंभव नहीं है। हम कहते हैं कि स्मरण करना है कि नहीं करना, अरे स्मरण करो। स्मरण कैसे करना है, सतत स्मरण करो। हृदय एक घड़ी के लिए रुकता नहीं है, स्मरण भी एक घड़ी के लिए रुकना नहीं है। हृदय है ठप 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 चलता है। एक जनरल है सरदार चीमा साहब, जनरल चीमा, उनके घर में उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये पंजाब बड़ा जल रहा है, तो आप हिंदू महात्मा आएंगे तो हमारे घर में रहें, तो आपको मिलने के लिए हिंदू आएंगे और हम सरदार हैं तो सरदार भी आएंगे, सारों के बीच में मेल होगा तो आए। तो मुझे वो कह रहे थे स्वामी जी आप सब समय में मैं देखता हूं आप बैठे रहे तो फिर जप करते रहते हैं। बोले कि मुझको भी मेरे ब्रा ने, मेरे पिताजी ने यही सिखाया, बोले कि जो तू गाड़ी में बैठता है ना तो गाड़ी का जो चक्का होता है ना ठप 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 करता है, अपने सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, ऐसे ही सतनाम वाहेगुरु बोलते चले जाना। मेरी जवानी में मेरे पिताजी ने मेरे को ये सिखा दिया, आप सतनाम वाहेगुरु बोलते हो के स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलते हो के नमः शिवाय बोलते हो के श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हो, ये गौण बात है, किंतु परमात्मा के किसी भी स्वरूप के साथ में ये समर्पित हमारे प्रत्येक विचार में, प्रत्येक सांस में, हृदय की धड़कन में आक्रंद करके, समर्पण करके जब हम संसार में ये भाव के साथ में रहते हैं। ध्यान देना, नौका दो तरह की होती है, एक पतवार से चलती है, दूसरी कोई जो ये पॉल यान होता है, पॉल यान वो सड़ डाली थी, उसमें से हवा से चलती है। तो पतवार से जो चलती है खुद को खेवैया करना पड़ेगा, और पॉल यान ऐसी है कि जिस पूर्वैया हवा चली तो आपको ये पूर्व ओर जाने वाली हवाएं तो आपके नौका को वो पूर्व की ओर लेके जाएंगे। हमारे जीवन की नौका को ये सड़ खोलना, समर्पण का सड़ खोल देना, परमात्मा की हवा आपको अपने आप उसके अलौकिक धाम में पहुंचा देगी। एक निशंक बात है, हम छोटी छोटी चीजों के लिए तड़पते हैं कि मेरी पत्नी अच्छी हो, मेरे बच्चे अच्छे हो। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे लिए क्या चाहिए, कुछ भी कमी नहीं रहेगी जब मैं खुद तुम्हारे साथ में हो जाऊंगा। कल रात एक छोटा बच्चा आया, बोल रहा था, छोटा तो बोलने से क्या है, 48-49 साल का था। मैं क्या क्या साधना करता हूं स्वामी जी आपको बताना चाहता हूं। वो 20 मिनट तक बोलता रहा कि मैं गणपति अथर्वशीर्ष करता हूं, बाद में ये श्लोक पढ़ता हूं, बाद में वो श्लोक पढ़ता हूं, 11 दफे नमः शिवाय पढ़ता हूं, 3 दफे हनुमान चालीसा बोलता हूं, उसके बाद में सुदर्शन कवच पढ़ता हूं, क्या 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 बोल दिया। मेरे को टाइम नहीं है, समझिए 40-45 मिनट लग जाते, आई गेट सफोकेशन विद दिस साधना। मैंने बोला तुमको इतने सारे भगवान को ये नाम लेने को कौन बोला, अपने आप। मैंने बोला देखो तू हिंग हिंग, जीरा जीरा, नमक नमक, मेथी मेथी, राई राय, ऐसा गुड़ गुड़, चीनी चीनी, गेहूं बाजरा, ऐसा बोलता है तो अब क्यों ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई गुरु हो तो उनको पूछो, उनको बताएंगे एक नाम लेना, एक ही लेना, ये कंफ्यूज कर रहे हो। तुमको सिर दर्द है तो दुकान में जाकर सेरिडोन पूछो, हाँ। कमर में दर्द है तो आपका ये हाथ में पांव दर्द है तो क्या बोलते हैं, ब्रूफेन पूछ ले। जितनी दवाई रखी है सारी क्यों खा लेता है तू बिना मतलब के। भगवान के नाम को लेना अनुचित नहीं है, किंतु मैं हनुमान के नाम नहीं लूंगा तो हनुमान मेरे को लात मार देगा, और लक्ष्मी का नाम नहीं लूंगा तो लक्ष्मी मेरे से पैसा, कोई सी को तुम्हारी परवाह नहीं, तुम क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो। तुम्हारे हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति भय मत रखो, प्रेम बनाओ, मन बना भव मत भक्त, प्रेम बनाओ, तुम अपना मन दो, बम 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 करने की जरूरत, मन से लगाओ, प्रेम दो परमात्मा को, उसी की उपासना करो, एक ही स्वरूप की, तो तुम मेरे साथ जुड़ जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा, आई विल बी लुकिंग आफ्टर यू, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं मैं तुम्हारी ठीक ठीक देखभाल करूंगा। ध्यान दें, ये जो कुछ कहा गया है 15 दिन में, मुझे अपने विचार ठोपने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, किंतु कृष्ण है उसके विचारधारा को समझने वाले हम कौन होते हैं, फिर भी कृष्ण की हाई चिंतन, कृष्ण ही बोल रहे हैं, कृष्ण ही सुन रहे हैं, और सुनना और बोलना भी कृष्ण ही है, इसी भाव से ये कृष्णत्व हो रहा है, इसकी कृष्ण को खुशी है। ऐसे जो कृष्ण है उनकी उपस्थिति, उनके समय दान और उनके अस्तित्व के लिए इस कृष्ण का प्रणाम। ओम शांति।